उद्घाटन कथन। उद्घाटन कथन एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार और ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे प्राचीन यूनानी विचारक की दुनिया में झांक रहे हैं जिनका नाम सुनते ही हम सबके दिमाग में वो स्कूल वाला प्रमेय आ जाता है ना, समकोण त्रिभुज वाला।
हाँ बिल्कुल, पाइथागोरस।
हाँ पाइथागोरस। लेकिन क्या उनकी कहानी सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर तक ही है? आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। सामोस के पाइथागोरस वो सिर्फ एक गणितज्ञ नहीं थे, बल्कि एक क्या कहें, एक गहरे दार्शनिक, संगीत के जानकार और एक रहस्यवादी विचारक भी थे।
सही कहा आपने, और उनकी सोच ने मतलब पश्चिमी दुनिया की नींव रखने में एक बड़ा रोल निभाया।
तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे।
नमस्ते। और ये वाकई बहुत दिलचस्प बात है कि पाइथागोरस जो लगभग 570 से 495 ईसा पूर्व के बीच हुए, मतलब कितना पुराना समय है।
हाँ।
वो इतने अलग अलग क्षेत्रों को, गणित, दर्शन, संगीत, आध्यात्मिकता, यहाँ तक कि थोड़ी राजनीति भी, इन सबको एक साथ बुन पाए।
कमाल है।
और शायद उनकी सबसे बड़ी देन यही सोच थी कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है इसके पीछे कोई गणितीय व्यवस्था है, एक सामंजस्य है,
एक हार्मनी।
बिल्कुल, एक हार्मनी। तो आज हम इसी विचार की जड़ें देखेंगे और उसका असर कहाँ तक गया ये समझने की कोशिश करेंगे। जाहिर है जो भी जानकारी हमारे पास उपलब्ध है उसी के आधार पर।
तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। सबसे पहले थोड़ा उस जमाने को समझें जिसमें पाइथागोरस थे। वो माहौल कैसा था यूनान में?
देखिए, पाइथागोरस का समय बहुत खास था। इसे धुरी युग या एक्चुअल एज कहते हैं, मतलब एक ऐसा दौर जब दुनिया भर में, यूनान, भारत, चीन, हर जगह नए नए नैतिक और दार्शनिक विचार एकदम से उभर रहे थे।
अच्छा।
यूनान में ये सुक्रात से पहले वाले दार्शनिकों का समय था, प्री सुक्राटिक्स। ये वो लोग थे जो पुरानी कथाओं यानी मिथोस से आगे बढ़कर तर्क और विवेक, लोगोस के आधार पर दुनिया को समझना चाह रहे थे।
मतलब वो ये पूछ रहे थे कि भाई दुनिया बनी किस चीज से है, इसके पीछे नियम क्या है।
जैसे वो थेल्स थे।
हाँ, थेल्स कह रहे थे सब पानी से बना है।
अनाक्सिमेंडर ने कहा कि कोई एक असीमित तत्व है, एपिरॉन।
और उसी समय हेराक्लिटस भी थे जो कह रहे थे कि सब कुछ बदल रहा है।
बिल्कुल, हेराक्लिटस का जोर बदलाव और संघर्ष पर था। दूसरी तरफ ज़ेनोफिनेस जैसे लोग थे जो देवताओं के इंसानी रूप की आलोचना कर रहे थे, कह रहे थे कि ईश्वर एक है, निराकार है। तो ऐसा माहौल था, विचारों का एक तरह का मंथन चल रहा था।
और यूनान का वो इलाका आयोनिया जहाँ सामोस द्वीप है, वो तो व्यापार का बड़ा केंद्र भी था ना?
हाँ, बहुत बड़ा, और इसका असर जरूर पड़ा होगा।
तो बाहर की संस्कृतियों से भी संपर्क हुआ होगा, मिस्र, बेबीलोन।
निश्चित रूप से, आयोनिया के रास्ते मिस्र, बेबीलोन, शायद पारस तक से व्यापार और विचारों का आदान प्रदान होता था, और इन सभ्यताओं के पास ज्यामिति, खगोल शास्त्र का बहुत पुराना ज्ञान था। मिस्र के पुरोहितों के पास, बेबीलोन के गणितज्ञों के पास।
तो माना जाता है कि पाइथागोरस ने इन जगहों की यात्रा की।
हाँ, ये बात काफी प्रचलित है। कहते हैं कि उन्होंने इन यात्राओं में वहां का ज्ञान सीखा और उसे अपने विचारों में मिलाया। इसी से शायद उनका वो गणित, दर्शन और रहस्यवाद का अनूठा मिश्रण बना।
उनके शुरुआती जीवन के बारे में क्या पता है? परिवार, शिक्षा?
उनका जन्म सामोस में ही हुआ था, एक अमीर व्यापारी परिवार में, तो शिक्षा अच्छी मिली। कुछ लोग मानते हैं कि वो थेल्स और एनाक्सिमेंडर के संपर्क में भी आए थे, शायद उनसे पढ़े भी हों।
लेकिन फिर उन्होंने सामोस छोड़ दिया।
हाँ, कहते हैं कि सामोस में एक तानाशाह था, पॉलीग्रेटस। उससे कुछ अनबन हुई या उसके शासन से वो सहमत नहीं थे, तो लगभग 535 ईसा पूर्व के आसपास उन्होंने सामोस छोड़ दिया। ये उनके जीवन का एक बड़ा मोड़ था।
और यहीं से उनकी वो लंबी यात्राएं शुरू हुई, मिस्र वाली।
बिल्कुल, कहा जाता कि कई साल उन्होंने मिस्र में बिताए, वहां के मंदिरों में पुजारियों के साथ अध्ययन किया। फिर बेबीलोन जाने की बात भी आती है, जहां गणित और खगोल विज्ञान का ज्ञान मिला होगा।
भारत आने की बात भी मैंने कहीं पढ़ी थी।
हाँ, कुछ स्रोतों में भारत यात्रा का भी जिक्र है, लेकिन ये थोड़ा विवादास्पद है, पक्का नहीं कह सकते। पर मिस्र और बेबीलोन की यात्राओं ने यकीनन उनके विचारों को एक नई दिशा दी होगी।
और शायद इन्हीं सब अनुभवों से उनका वो सबसे क्रांतिकारी विचार निकला, सब कुछ संख्या है, ऑल इज नंबर। सुनने में कितना सरल लगता है, पर उस समय के लिए तो ये,
हाँ, बहुत बड़ी बात थी। ये सिर्फ ये कहना नहीं था कि गणित हिसाब किताब के लिए अच्छा है, ये कहना था कि असलियत ही गणित पर टिकी है। रियलिटी इज मैथमेटिकल,
मतलब हर चीज के मूल में नंबर हैं, संगीत के सुर हों या ग्रहों की चाल।
बिल्कुल, या नैतिक गुण भी। हर चीज के पीछे संख्याएं और उनके अनुपात काम कर रहे हैं। ये दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया अमूर्त तरीका था। मतलब जहां पहले के दार्शनिक किसी भौतिक तत्व, पानी, हवा को मूल मान रहे थे, पाइथागोरस ने एक अमूर्त सिद्धांत यानी संख्या को ब्रह्मांड का आधार बताया।
इसी को आपने शुरू में गणितीय रहस्यवाद कहा था, मैथमेटिकल मिस्टिसिज्म।
हाँ, उनके लिए संख्याएं सिर्फ गिनती के निशान नहीं थी, वो पवित्र थीं, दिव्य थीं। गणित एक तरह से उस ईश्वरीय व्यवस्था को समझने की कुंजी था। ब्रह्मांड एक सामंजस्यपूर्ण रचना है, एक संगीत की तरह, और गणित के जरिए हम उस संगीत को, उस व्यवस्था को समझ सकते हैं।
तो ये ज्ञान सिर्फ दिमाग का खेल नहीं था, एक आध्यात्मिक यात्रा भी थी।
हाँ बिल्कुल, ये जानना कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, ये खुद को बेहतर बनाने और शायद उस परम सत्य के करीब जाने का रास्ता था।
और इसी आध्यात्मिक पहलू से उनका वो आत्मा वाला सिद्धांत जुड़ता है, पुनर्जन्म वाला, मेटेम्साइकोसिस।
सही, पाइथागोरस और उनके अनुयायी मानते थे कि आत्मा अमर है, वो मरती नहीं, बल्कि कर्मों के हिसाब से अलग अलग शरीरों में जन्म लेती रहती है, कभी इंसान कभी जानवर।
अच्छा,
और इस जन्म मरण के चक्र से निकलने का रास्ता क्या था? नैतिक जीवन जीना, ज्ञान हासिल करना, मन को शुद्ध करना, और यही विश्वास उनके समुदाय के कड़े नियमों का आधार बना। क्या खाना है, क्या नहीं, कैसे जीना है।
ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे गणित, संगीत, नैतिकता, आत्मा, ये सब एक ही सिस्टम का हिस्सा थे उनके लिए। संगीत की बात करें तो उनकी वो खोज के सुरों का गणित से रिश्ता है, वो क्या थी?
वो उनकी सबसे ठोस और प्रसिद्ध खोजों में से एक मानी जाती है। उन्होंने देखा कि संगीत में जो ध्वनियां एक साथ सुनने में अच्छी लगती हैं, जिन्हें हम सुसंवादी कॉन्सोनेंट कहते हैं, जैसे सप्तक या पंचम, परफेक्ट फिफ्थ, उनके तार की लंबाइयों या आवृत्तियों के बीच का अनुपात बहुत सरल पूर्णांकों में होता है।
जैसे?
जैसे सप्तक के लिए 2.1 का अनुपात या पंचम के लिए 3.2 का। एक तरह का सबूत था कि सौंदर्य और सामंजस्य के पीछे गणित के नियम हैं।
सुंदरता गणितीय है।
और फिर इसी आइडिया को उन्होंने पूरे ब्रह्मांड पर लागू कर दिया, वो गोलाकार संगीत वाली बात।
हाँ, म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स या म्यूजिका यूनिवर्सालिस। उनका तर्क था कि जैसे वाद्य यंत्रों के तार हिलने से ध्वनि निकलती है, वैसे ही आसमान में घूमते हुए ग्रह और तारे अपनी गति और दूरियों के गणितीय अनुपातों की वजह से एक दिव्य संगीत पैदा करते हैं,
जैसे हम सुन नहीं सकते।
हाँ, क्योंकि या तो ये संगीत इतना सूक्ष्म है या फिर हम इसके इतने आदि हो चुके हैं जन्म से कि हमें पता ही नहीं चलता।
ये सोच दिखाती है कि वो ब्रह्मांड को एक पूरी तरह से व्यवस्थित गणितीय और संगीतमय इकाई मानते थे।
अद्भुत। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या पाइथागोरस ने ये सब खुद लिखा था? क्या उनके कोई ग्रंथ है?
नहीं, यही एक मुश्किल है। पाइथागोरस ने खुद कुछ नहीं लिखा। उस जमाने में, खासकर ऐसे रहस्यवादी समूहों में, ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से, मतलब मौखिक रूप से ही आगे बढ़ता था।
तो उनकी बातें हम तक पहुंची कैसे?
उनके शिष्यों के जरिए, जिन्हें पाइथागोरियन कहा जाता था, जैसे फिलोलॉस, आर्किटस, इन लोगों ने उनकी शिक्षाओं को सहेजा, उन पर काम किया, उन्हें लिखा भी। लेकिन इसी वजह से
ये पता करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी बात असल में पाइथागोरियस की थी और कौन सी बाद में जोड़ी गई।
बिल्कुल, इसी को विद्वान पाइथागोरियन प्रश्न, पाइथागोरियन क्वेश्चन कहते हैं। ये गुत्थी आज तक पूरी तरह सुलझी नहीं है। बहुत से विचार, जैसे कि वो प्रसिद्ध प्रमेय
a² + b² = c²,
हाँ, हो सकता है कि ये प्रमेय या उसका प्रमाण उनके स्कूल ने, उनके अनुयायियों ने मिलकर विकसित किया हो।
बल्कि ये जो संबंध है, ये तो बेबीलोन और मिस्र में शायद पाइथागोरस से पहले भी लोगों को पता था।
अच्छा, तो फिर पाइथागोरस या पाइथागोरियंस का योगदान क्या था उसमें? उनका मुख्य योगदान शायद उसका पहला तार्किक प्रमाण, लॉजिकल प्रूफ देना था। उन्होंने गणित को सिर्फ नापने जोखने या व्यवहारिक समस्याओं को सुलझाने के टूल से ऊपर उठाया, उसे एक सैद्धांतिक विज्ञान बनाया, जहां परिभाषाएं, सिद्धांत और प्रमाण महत्वपूर्ण थे। ये गणित के विकास में बहुत बड़ा कदम था।
प्रमेय के अलावा और कौन से सिद्धांत मुख्य तौर पे पाइथागोरियन माने जाते हैं?
एक तो संगीत में अनुपात का सिद्धांत, जिसकी हमने बात की। दूसरा वो गोलाकार संगीत का विचार। इसके अलावा ब्रह्मांड की संरचना, आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म, और नैतिक जीवन जीने के नियम, ये सब उनके दर्शन के अहम हिस्से थे।
अगर हम पाइथागोरस की तुलना उनके समय के दूसरे यूनानी विचारकों से करें, जैसे आपने थेल्स या हेराक्लिटस का नाम लिया था, तो क्या मुख्य अंतर दिखता है?
सबसे बड़ा अंतर तो वही है जो हमने पहले कहा। जहां मिलिटस के दार्शनिक थेल्स एनैक्सिमेंडर किसी भौतिक चीज पानी हवा या कोई असीम तत्व को मूल मान रहे थे, पाइथागोरस ने एक अमूर्त सिद्धांत संख्या को परम सत्य बताया। ये सोच में एक बहुत बड़ा, क्या कहें, लीप था।
और हेराक्लिटस से जो बदलाव पे जोर दे रहे थे,
हाँ, हेराक्लिटस को दुनिया लगातार बदलती हुई एक तरह के संघर्ष में दिख रही थी,
जबकि पाइथागोरस उस बदलाव के पीछे छिपे हुए स्थायी नियमों, उस गणितीय सामंजस्य को खोजना चाह रहे थे। एक स्थिरता की तलाश थी।
क्या उनके विचारों का असर बाद के बड़े दार्शनिकों पर भी हुआ, जैसे प्लेटो?
हाँ, बहुत गहरा असर हुआ। प्लेटो पर पाइथागोरियन विचारों का जबरदस्त प्रभाव माना जाता है। प्लेटो का जो फॉर्म्स का सिद्धांत है, थियोरी ऑफ फॉर्म्स, कि असली दुनिया इंद्रियों वाली दुनिया नहीं बल्कि विचारों की अमूर्त सत्ताओं की दुनिया है और वो दुनिया गणितीय है, ये सोच पाइथागोरियन भावना से बहुत मिलती जुलती है।
अच्छा।
प्लेटो की जो अकेडमी थी, कहा जाता है कि उसके गेट पर लिखा था, जिसे ज्यामिति न आती हो वो अंदर न आए। गणित को दर्शन के लिए इतना जरूरी मानना, ये पाइथागोरियन प्रभाव को दिखाता है।
ये तो वाकई बहुत बड़ी विरासत है। क्या ये परंपरा पाइथागोरस के जाने के बाद भी चलती रही? हाँ, काफी लंबे समय तक। पाइथागोरियन स्कूल या समुदाय तो शायद ज्यादा दिन नहीं चला, लेकिन उनके विचार चलते रहे। हेलेनिस्टिक काल में, रोमन साम्राज्य के समय में नियो पाइथागोरियंस विचारक हुए जिन्होंने इन विचारों को जिंदा रखा।
और मध्य युग में
भी ईसाई दार्शनिकों ने, जैसे सेंट ऑगस्टाइन ने, संख्याओं के प्रतीकवाद और ब्रह्मांडीय सामंजस्य के पाइथागोरियन विचारों को अपने दर्शन में जगह दी। फिर पुनर्जागरण, रेनेसांस के समय, जब यूनानी ज्ञान फिर से यूरोप में आया, तो पाइथागोरस के विचार, खासकर वो संगीत और ब्रह्मांड के सामंजस्य वाले, फिर से बहुत लोकप्रिय हुए।
और आधुनिक विज्ञान पर इसका क्या असर रहा? क्या आज के विज्ञान से भी कोई कनेक्शन है?
मुझे लगता है सबसे स्थायी असर यही है, ये जो मूल विश्वास है कि प्रकृति के नियम गणितीय हैं, कि हम गणित की भाषा में ब्रह्मांड को समझ सकते हैं, ये आधुनिक विज्ञान की एकदम नींव है।
मतलब गैलीलियो, न्यूटन?
हाँ, गैलीलियो, केपलर, न्यूटन से लेकर आइंस्टाइन और आज के भौतिक विज्ञानी तक, सभी इसी विश्वास पर काम करते हैं कि ब्रह्मांड में एक तर्क है, एक गणितीय व्यवस्था है। इस सोच की शुरुआत कहीं ना कहीं पाइथागोरस से हुई।
तो आज भी पाइथागोरस सिर्फ एक प्रमेय का नाम नहीं है?
बिल्कुल नहीं। गणित की किताबों में तो वो प्रमेय अमर है ही, लेकिन उनका ये आइडिया कि ब्रह्मांड में एक छिपा हुआ गणितीय संगीत है, एक व्यवस्था है, ये आज भी वैज्ञानिकों को प्रेरित करता है, जैसे सब कुछ का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग खोजने की कोशिश।
और शिक्षा के बारे में उनका क्या कहना था?
उनका ये मानना कि बौद्धिक खोज और नैतिक जीवन साथ साथ चलने चाहिए। ये आज भी समग्र शिक्षा, होलिस्टिक एजुकेशन के विचारों को बल देता है। और हाँ, पश्चिमी संगीत के सिद्धांत की नींव में भी उनका काम साफ दिखता है।
उनके कुछ कथन भी बहुत मशहूर है, वो सब कुछ संख्या है तो है ही।
हाँ, वो तो उनका मूल मंत्र था। एक और है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगता है, सबसे पुराने सबसे छोटे शब्द हाँ और नहीं, ये वो हैं जिन पर सबसे ज्यादा सोचने की जरूरत है।
वाह, मतलब नैतिक चुनाव कितने महत्वपूर्ण हैं।
बिल्कुल, ये उनके नैतिक चिंतन पर जोर देता है। और एक और कथन जो आपने पहले भी कहा था, बच्चों को शिक्षित करो और पुरुषों को दंडित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
शिक्षा की शक्ति में कितना विश्वास था उन्हें।
हाँ, उनके लिए ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं था, बल्कि आत्मा को सुधारने का तरीका था। और उनकी ब्रह्मांड की दृष्टि इस कथन में दिखती है। तारों के गुंजन में ज्यामिति है, गोलों के अंतराल में संगीत है। कितना काव्यात्मक है।
सच में, गणित, संगीत, खगोल, सब एक साथ। एक और कथन अनुशासन पर जोर देता है। बहुत शब्दों में थोड़ा मत कहो, बल्कि कुछ शब्दों में बहुत कुछ कहो।
ये उनके समुदाय के अनुशासन को दिखाता है। कहते हैं उनके स्कूल में जो नए लोग आते थे, उन्हें शुरू में सालों तक चुप रहना पड़ता था, सिर्फ सुनना, सोचना, ताकि वो शब्दों का मोल समझें और सोच समझ कर बोलें।
उनके समुदाय की बात आई है, तो वो जो उन्होंने दक्षिणी इटली के क्रोटोन में बनाया था, वो क्या था? स्कूल था या मठ या कुछ और?
वो शायद इन सबका मिश्रण था। एक स्कूल जहां दर्शन और गणित पढ़ाया जाता था, एक धार्मिक समुदाय जहां सख्त नियम थे, खान पान के नियम थे, जैसे मांस न खाना, और आत्मा की शुद्धि पर जोर था, और एक तरह का राजनीतिक समूह भी था।
राजनीतिक समूह भी?
हाँ, वो लोग क्रोटोन की राजनीति में काफी सक्रिय थे। आमतौर पर वो कुलीन तंत्र, यानी अमीरों या ऊंचे वर्ग के शासन का समर्थन करते थे, और इसी वजह से उनका काफी विरोध भी हुआ, और अंत में उनके समुदाय पर हमला हुआ और उसे खत्म कर दिया गया।
अच्छा, मतलब उनका अंत अच्छा नहीं हुआ।
हाँ, इतिहास तो यही बताता है। समुदाय बिखर गया, पाइथागोरस को भी शायद भागना पड़ा।
पाइथागोरस के बारे में कुछ अजीबोगरीब कहानियां भी हैं, वो सोने की जांग वाली।
हाँ है, किस्से कहानियां तो महान लोगों के साथ जुड़ी जाती हैं, जैसे ये कहानी कि उन्होंने कुत्ते के भौंकने में अपने किसी मरे हुए दोस्त की आत्मा पहचान ली थी। ये उनके पुनर्जन्म वाले सिद्धांत से जुड़ता है।
और वो सोने की जांग?
हाँ, कि उनकी एक जांग सोने की थी, या वो एक ही समय में दो अलग अलग जगहों पर देखे जा सकते थे। ये बातें शायद उनके अनुयायियों ने उनकी दैवीय छवि बनाने के लिए फैलाई होंगी।
और वो सेम बीन्स पर पाबंदी, वो क्यों थी? फावा बीन्स क्यों नहीं खा सकते थे?
ये बड़ा रहस्यमय नियम है, इसके पीछे कई थ्योरी हैं। एक तो यह कि फावा बीन से कुछ लोगों को एक बीमारी हो जाती है, फेविज्म, शायद इसलिए मना हो।
और
दूसरा, शायद मानते थे कि सेम खाने से पेट में गैस बनती है, जिससे ध्यान भटकता है। एक और मजेदार थ्योरी यह है कि सेम का आकार कुछ कुछ इंसानी भ्रूण जैसा होता है, तो शायद उसे जीवन का प्रतीक मानकर खाने से मना करते थे।
और एक राजनीतिक कारण भी सुना था।
हाँ, कि एथेंस वगैरह में वोट डालने के लिए सेम का इस्तेमाल होता था।
हाँ,
सफेद मतलब हाँ, काली मतलब ना, और क्योंकि पाइथागोरियन लोकतंत्र के खिलाफ थे, तो शायद वो सेम को ही नापसंद करते थे।
कमाल है, एक सेम के पीछे इतनी बातें, और वो कहानी कि उनकी मौत भी इसी चक्कर में हुई।
हाँ, एक कहानी ये भी है कि जब दुश्मन उनके पीछे पड़े थे, तो वो भागते भागते एक सेम के खेत के पास पहुंचे, लेकिन खेत में घुसने के बजाय वो वहीं रुक गए, क्योंकि नियम तोड़ना मंजूर नहीं था, और वहीं पकड़े गए और मारे गए। अब ये सच है या कहानी कौन जाने, पर ये दिखाता है कि नियम कितने पक्के थे।
लेकिन उनके समुदाय में सिर्फ रहस्य और नियम नहीं थे, एक बहुत बड़ी बौद्धिक खोज भी हुई जिसने शायद उन्हें हिला दिया होगा। अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर्स।
हाँ, ये उनके दर्शन के लिए एक बहुत बड़ा संकट था। कहते हैं कि हिप्पासस नाम के एक पाइथागोरियन ने ये खोज लिया कि रूट दो यानी रूट टू को दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिख सकते।
और ये उनके मूल सिद्धांत के खिलाफ था कि सब कुछ सरल अनुपात है।
बिल्कुल, ये उनके उस विश्वास पर सीधा हमला था कि पूरा ब्रह्मांड सुंदर सरल पूर्णांकों और उनके अनुपातों से बना है। रूट टू तो इस व्यवस्था में फिट ही नहीं हो रहा था।
तो क्या हुआ फिर इस खोज का? इसे छुपाया गया?
कहानी तो यही है कि इस भयानक सच को बाहर लाने की सजा के तौर पर हिप्पासस को समुद्र में डुबो दिया गया, ताकि ये बात फैले नहीं।
बाप रे।
अब इसमें कितनी सच्चाई है कहना मुश्किल है, पर यह दिखाता है कि ये खोज उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती थी। गणित के लिए तो यह बहुत बड़ी खोज थी, लेकिन उनके दर्शन के लिए एक संकट।
जाहिर है, इतने अनोखे और प्रभावशाली व्यक्ति थे तो उनकी आलोचना भी होती होगी।
हाँ, प्राचीन काल से ही हेराक्लिटस ने तो उन्हें बहुत ज्ञान इकट्ठा करने वाला पर असल समझ न रखने वाला कहा था। उनकी शिक्षाओं का वो गुप्त तरीका समुदाय का पंथ जैसा होना।
जैसे वो कहते थे ऑटोस एफे।
हाँ, उन्होंने स्वयं कहा, ही हिमसेल्फ सेड इट, मतलब पाइथागोरस ने कह दिया तो बस वही अंतिम सत्य है, उस पे सवाल नहीं। इसकी आलोचना होती थी उनकी राजनैतिक सक्रियता, उनका अमीरों का साथ देना, इस पर भी सवाल उठते थे। उन्हें अभिमानी, अलोकतांत्रिक भी कहा गया।
और आज के विद्वान भी बहस करते हैं।
बिल्कुल, मुख्य बहस वही पाइथागोरियन प्रश्न है कि असली पाइथागोरस कौन था और मिथक कितना है। कौन से विचार उनके खुद के लिए, कौन से उनके शिष्यों के। कुछ इतिहासकार तो ये भी मानते हैं कि शायद पाइथागोरस प्रमेय का प्रमाण भी बाद के अनुयायियों ने ही दिया हो।
तो आखिर में हम पाइथागोरस को कैसे समझें? क्या है वो, एक गणितज्ञ, दार्शनिक, गुरु?
या शायद वो इन सब का एक अनूठा मिश्रण थे, तर्क और रहस्य का संगम। उन्होंने गणित को एक पवित्र रास्ते की तरह देखा, दुनिया को समझने का भी और खुद को बेहतर बनाने का भी।
उनका सबसे स्थायी विचार कौन सा है जो आज भी हमारे साथ है?
मेरे ख्याल से ये विश्वास कि ये ब्रह्मांड केओटिक नहीं है, मनमाना नहीं है, बल्कि इसमें एक गहरी समझने लायक गणितीय संरचना है, एक तर्क है, और हम इंसान अपनी बुद्धि से उस तर्क को समझ सकते हैं। ये सोच ही तो विज्ञान की जान है और दर्शन को भी राह दिखाती है।
उन्होंने ये भी दिखाया कि ज्ञान की खोज सिर्फ चीजें बनाने या समस्या सुलझाने के लिए नहीं होती।
हाँ, बल्कि सत्य, सौंदर्य और सामंजस्य को खोजने के लिए भी होती है।
आज के समय में जब ज्ञान इतना स्पेशलाइज्ड हो गया है, गणित अलग, फिजिक्स अलग, दर्शन अलग, संगीत अलग, क्या पाइथागोरस का इन सबको जोड़ने का नज़रिया हमें कुछ सिखा सकता है? क्या हम आज भी इन अलग अलग दिखने वाले ज्ञान के क्षेत्रों में कोई गहरा संबंध खोज सकते हैं?
ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या ज्ञान को इस तरह समग्र रूप से देखने से हम दुनिया को और शायद खुद को भी ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे? पाइथागोरस कम से कम हमें ये सवाल पूछने के लिए तो जरूर प्रेरित करते हैं।
समापन कथन।
समापन कथन। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नई विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।